हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। हॉल में नीचे अनंत ने जैसे ही देखा कि सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था, वो निवेदिता के पास जाते हुए बोला, चाचा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझे रूहान का कॉल आया था। रूहान का नाम सुनते ही निवेदिता गौर से अनंत की बात सुनने लगी। उन्हें ये जानकर खुशी हो रही थी कि चलो अनंत से ही सही, रूहान ने कुछ तो उनके बारे में कहा था। पर अनंत की आगे की बात सुनकर उनका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। अनंत ने अपना गला साफ करते हुए कहा, रूहान बोल रहा था कि विहा का मिसकैरेज हो गया है और वे लोग अस्पताल में हैं, हमें उनसे मिलने जाना है। अगले ही पल निवेदिता ने चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कल तो विहा बिल्कुल ठीक थी और डॉक्टर भी बोल रही थी कि उसकी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी क्रिटिकल बात नहीं है, मिसकैरेज होने का कोई चांस नहीं है। अनंत ने निवेदिता के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ चाचा जी, ये बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन ऐसा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि हम लोग ज्यादा देर करें। सब लोगों को हमारी जरूरत होगी, जितनी जल्दी हो सके हमें उतनी जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए, निवेदिता ने रोते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, हो सकता है रूहान झूठ बोल रहा हो क्योंकि वो यहाँ पर किसी को पसंद नहीं करता है। अनंत कुछ बोल पाता उससे पहले ही राधिका ने कहा, भाभी, अनंत बिल्कुल सही बोल रहा है, मुझे कल अनाही ने कॉल करके बताया था कि विहा का मिसकैरेज हो गया है और वो जैसे ही ठीक होगी वो हम सब लोगों को मिलने के लिए बुलाएगी। राधिका की आवाज में भी दर्द था। वो निवेदिता के पास आई और उन्हें गले लगा लिया। निवेदिता अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो राधिका की गोद में रोने लगी। मेरी पोती, मेरा नाती, वो सपना सब खत्म हो गया, राधिका ने उन्हें सहलाते हुए कहा। भाभी, रोइए मत, विहा को हमारी जरूरत है, वो बहुत अकेली महसूस कर रही होगी, माधवी ने भी झूठा दिखावा करते हुए कहा। हे राम, ये सब कुछ क्या हो गया, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी हमारे घर में जब भी खुशियां आती हैं तो कुछ ना कुछ बुरा कैसे हो जाता है। लगता है घर की नज़र उतरवानी पड़ेगी और घर में एक अच्छी पूजा भी रखवानी पड़ेगी। अनंत को अपनी माँ की बात सुनकर थोड़ा अफसोस हो रहा था कि वो निवेदिता को संभालने की बजाय ऐसी बातें कर रही थी। फिर भी वो गहरी सांस लेकर उठा और फिर से अपने कमरे में चला गया। राव्या अभी भी बाथरूम के अंदर थी। ये देखकर अनंत ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या इस लड़की को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि सब लोगों पर क्या बीत रही है और ये आराम से इतनी देर तक शावर ले रही है। इतना सोचने भर से अनंत की मुट्ठियां गुस्से में कस गईं। उसने बाथरूम का दरवाजा एक लात मारते हुए खोला और फिर अंदर जाते ही जैसे ही वो राव्या पर चिल्लाने वाला था, उसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि राव्या बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उस पर शावर का पानी लगातार गिर रहा था। ये देखकर एक पल के लिए तो अनंत की सांस अटक गई। अगले पल वो घुटनों के बल बैठते हुए राव्या को अपनी बाहों में लेकर उसके गाल थपथपाते हुए बोला, बेबी उठो, क्या हुआ तुम्हें। अनंत की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने तुरंत ही राव्या को अपनी बाहों में उठाया और फिर उसे कमरे के अंदर ले गया। उसने राव्या के गाल थपथपाए, फिर उसके माथे पर हाथ रखा जो कि बहुत ठंडा था। अनंत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो घुटनों पर बैठ गया, राव्या का हाथ पकड़कर बोला, प्लीज आंखें खोलो, मैं डर रहा हूँ। कुछ देर बाद ही राव्या की पलकें हल्के से हिली। वो धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। अनंत, मुझे चक्कर आया शावर में, अनंत ने गुस्से में कहा। इतनी देर शावर क्यों लिया, तुम्हें कुछ हो जाता तो, राव्या ने कमजोर मुस्कान दी। मैं बस थक गई थी, सब कुछ विहादी की खबर सुनकर मन भारी था, पानी से सब धुल जाए सोचा। अनंत की आंखें फिर भर आईं। उसने राव्या के माथे पर किस किया, फिर उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, सॉरी मैंने बाहर गुस्सा किया, लेकिन तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल रुक गया था। राव्या ने अनंत का हाथ पकड़ा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा कमजोर महसूस हो रहा है। अनंत ने तुरंत उठकर पानी का ग्लास लिया और राव्या को पिलाया। फिर उसने अलमारी से कपड़े निकाले और राव्या को धीरे धीरे पहनाए। अब तुम बिस्तर पर लेटी रहो, मैं नीचे सबको बताता हूँ कि हम थोड़ी देर में निकलेंगे, राव्या ने रोकते हुए कहा। नहीं, मैं भी चलूंगी, विहा को देखना है। अनंत ने थोड़ी देर राव्या को समझाया कि वो इस हालत में हॉस्पिटल ना जाए, लेकिन उसके बाद उसकी जिद की वजह से वो उसे बाहों में उठाकर कमरे से बाहर ले गया। बाहर जाते ही राव्या को शर्मा रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिलहाल माधवी और निवेदिता पहले ही गाड़ी में अस्पताल के लिए निकल गई थी, इसीलिए अनंत और राव्या को इस तरीके से किसी ने नहीं देखा। इसके बाद निमानी हाउस के सारे सदस्य एक एक करके सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। निवेदिता जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली, उन्होंने देखा कि रूहान अनाही का हाथ पकड़े जबरदस्ती उसे बाहर की तरफ लेकर जा रहा था। उसे ऐसे देखकर निवेदिता ने चिल्लाते हुए कहा, रूहान, तुम अनाही के साथ क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, कहाँ लेकर जा रहे हो? इस पर रूहान ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो वहीं अनाही ने जैसे ही उन सबको वहाँ देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने निवेदिता के चेहरे को देखा था और उसकी आंखें भी रोने के कारण सूज गई थी। उसने जबरदस्ती रूहान से अपना हाथ छुड़ाया और फिर जल्दी से निवेदिता के गले लगाते हुए बोली, आई एम सॉरी मम्मी जी, पर मुझे अभी तो जाना पड़ेगा। आपका बेटा बहुत जल्दबाज है, वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ रुकूं, लेकिन आप विवाह का ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के बीच आप खुद को भूल जाओ। निवेदिता ने अनाही के माथे पर किस करते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी, फिलहाल मुझे विवाह को देखना है। इतना बोलकर वो तेजी से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी और रूहान ने भी आगे बढ़कर फिर से अनाही का हाथ पकड़ लिया। उसे जबरदस्ती गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठाकर उसे सीट बेल्ट पहनाते हुए बोला, मैडम जी प्लीज मेरा यकीन करिए, आपका यहाँ से जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन दोनों पति पत्नी को सिर्फ एक दूसरे की जरूरत है, किसी तीसरे इंसान की नहीं, और अगर कोई तीसरा इंसान उनके बीच रहेगा भी तो उनके बीच गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी और कुछ भी साफ नहीं हो पाएगा। अनाही ने रूहान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो वैसे ही उस सीट पर बैठी रही जैसे रूहान ने उसे बैठाया था। उसके बाद रूहान खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उनकी गाड़ी अब जंगल की तरफ निकल गई थी, क्योंकि रूहान की परेशानी का हल सिर्फ और सिर्फ उसका वो जंगल और उसके जंगली जानवर थे। कहीं दूसरी तरफ विहा के वार्ड में विहा ने लगभग सारा सामान तोड़ दिया था और वो बेड से उठ चुकी थी। वेदांत उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, पर वो विहा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। उसने वेदांत के शरीर पर कई जगह चोट भी दे दी थी जहाँ से खून निकल रहा था, पर वेदांत को फिलहाल उन चोटों का बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। उसे अपने सामने खड़ी विहा की चिंता हो रही थी। विहा के हाथ में फिलहाल एक लकड़ी की स्टूल थी और वो लगभग रोते हुए बोल रही थी,
मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? वेदांत ने उसे शांत करवाते हुए कहा, प्लीज विहा, अभी तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम बाहर चल फिर पाओ। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी तुम्हें यहाँ से आज़ादी मिल जाएगी और कोई तुम्हें नहीं कहेगा कि तुम यहीं रहो। अभी के लिए बेटा समझने की कोशिश करो, यहाँ तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहता है। विहा ने चिल्लाते हुए कहा, बुरा नहीं चाहता तो कोई भला भी नहीं चाहता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेला रहना है, मुझे शांति चाहिए। इतना बोलने के साथ ही विहा बुरी तरह रोने लगी और धम से घुटनों के बल वहीं फर्श पर बैठ गई। उसके हाथ से वो स्टूल भी छूट कर गिर गई। उसका सब्र का बांध टूटता ही जा रहा था और उसके आंसू अब उससे बिल्कुल नहीं रुक रहे थे।